मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 15 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं मित्रों, अपने उन सात नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं संजीत कुमार गौतम मुजफ्फरपुर बिहार से, अजय पाल मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, संदीप खत्री रोहतक हरियाणा से, सुयश डुमरी झारखंड से, अश्वनी कुमार भारती गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, अंकुर वर्मा मुंबई से और नीरज पाल गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो संजीत, अजय, संदीप, सुयश, अश्वनी, अंकुर और नीरज, आप सभी सातों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और सच पूछे तो एक लाइन और की बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा भी कर रहा। दोस्तों, अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, आप लोगों ने एआईआर न्यूज सुनी ही होगी। कल के एआईआर न्यूज में तीन पॉइंट्स मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और आपको इन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली खबर आपने देखी है दोस्तों कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी, जो हिंदी में शब्द चल गया है नोटबंदी, अदरवाइज अर्थशास्त्र का ये शब्द विमुद्रीकरण, नोटबंदी का की समीक्षा की अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ में। और इसके बाद एक दो जगह पर उन्होंने और भी जो बातें कही जिसे न्यूज में हाईलाइट किया गया है। मित्रों, जब न्यूज में कोई बात हाईलाइट की जाती है तो आप मान करके चलिए कि ये इसका एक विशेष पर्पज है, यानी पर्पज ना भी हो तो ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम उन 24 घंटों में तो वो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैं एआईआर न्यूज की बात करता हूं और एआईआर जो न्यूज है, जो मीडिया है, वो ऑफिशियल मीडिया है ना। तो बट नेचुरल है कि उसका एक विशेष दायित्व होता है, उसकी अपनी एक विशेष दृष्टि होती है और उस दृष्टि और दायित्व को ही ध्यान में रख करके वो अपने न्यूज को स्वरूप प्रदान करते हैं। आपने उसमें देखा कि तीन बातें अलग अलग रूप में कही गई हैं और तीनों बातें हमारे देश के अभी मेन एजेंडा में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओर से खुले रूप में कहा है। वो तीन बातें कौन सी हैं? मित्रों, पहली बात है डिजिटलीकरण। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा डिजिटलीकरण और नगदी रहित कैशलेस सोसाइटी। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिविल सर्विस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि इन दो टॉपिक्स पर जितनी अच्छी तैयारी की जा सकती है उस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। और जब हम डिजिटलीकरण और कैशलेस सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, तो चूंकि ये एक बहुत ही सामान्य सा विषय भी ये बन गया है। सामान्य सा विषय का मतलब है कि इसकी जो सामान्य बातें हैं, जो सामान्य विशेषताएं हैं कह लीजिए, वो आम लोगों को भी अब मालूम हो गई है कि ये कैशलेस सोसाइटी क्या होती है और ये डिजिटलीकरण क्या होता है। अब सवाल यह है कि सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो यह कि आप एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, हाईएस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सामान्य लोग तो इसके बारे में जान ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आप हाईएस्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी थोड़ी सी असाधारण तरीके से करनी होगी। देखिए, ये जो बात मैं कह रहा हूं इस रूप में कि जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली जनरल शब्द है, लेकिन वह टॉपिक जो इतना ज्यादा जनरलाइज हो जाए कि हर लोगों के नॉलेज में आ जाए, तो फिर उसके जनरल की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। तो उसके जनरल की डेफिनेशन क्या होगी? जनरल से थोड़ा ऊपर, यानी कि यह लगे कि हाँ नहीं, इस विषय पर आपको थोड़ी विशिष्ट जानकारी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी आप कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो सफलता का जो राज है या रहस्य है, या यूं कह लीजिए कि जो फार्मूला है, राज और रहस्य की हम बात क्यों करें, कोई रहस्य नहीं है। जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो केवल यही है कि आप कैसे दूसरों से बेहतर परफॉर्म दे पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, बस खत्म हो गए। आपका जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों से बेहतर होना चाहिए। तो अब एक ऐसा टॉपिक जो कॉमन हो गया है, आप दूसरों से बेहतर कैसे बनाएंगे उसे, तो स्वाभाविक है दोस्तों कि फिर आप इसके थोड़े से टेक्निकल पक्ष पर जाएंगे और इसको विस्तार दे देंगे। विस्तार का मतलब है कि केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न देख और समझकर आप इसे थोड़े वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैशलेस की क्या स्थिति है, डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने उत्तर में दूसरों से अलग लिख सके तो बस वही आपको माइलेज दे देगा, दूसरों से थोड़ा सा बेहतर बना देगा और आपका फार्मूला काम कर जाएगा। तो दोस्तों, तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कल के न्यूज में आपने देखे। दो तो मैंने आपको बताया, डिजिटलीकरण और नगदी रहित कैशलेस सोसाइटी, और थर्ड पॉइंट है काला धन, ब्लैक मनी की खत्म समाप्ति, है ना। ये जो काले धन की जो अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि ये मेरे टॉप प्रायोरिटी पर है, काला धन समाप्त करना मेरे टॉप प्रायोरिटी पर है। ये बात अलग है कि उस काला धन को समाप्त करने में जो डिजिटलीकरण है और कैशलेस सोसाइटी है वो मदद करेगा। याद रखिए कि डिजिटलीकरण और कैशलेसनेस ये दोनों अलग अलग है। जब हम डिजिटलीकरण की बात करते हैं तो सारी तरह के डिजिटलाइजेशन की बात होती है। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी के बिट का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसमें केवल ये नहीं है कि धन जमा करने के बारे में ही डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अगर आपका आधार कार्ड है तो वो भी डिजिटलाइज्ड हो गया है, राइट। तो डिजिटलीकरण तो एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि आप पैसा भी मोबाइल फोन के जरिए जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, और ये तभी आप कर सकते हैं जब डिजिटलीकरण हो चुका हो। तो इन अंतर को समझ लीजिए, और जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तो काला धन को समाप्त करने में अपने आप मदद मिलेगी। ये आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और यही क्लियरिटी आपके आंसर में भी आनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। मित्रों, इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है, हिंदी के बिजनेस स्टैंडर्ड में। इसका टाइटल है आखिर बैंक में जमा से क्यों है दूरी। इसमें जो विश्व के देश हैं उनके बारे में भी बात है, उनकी बात भी है, और जो भारत की स्थिति है उसके बारे में भी बात है। और मुझे अच्छा ये आर्टिकल इसलिए लगा कि इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की गई है। इसमें एक दो बहुत नई बातें कही गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका आंसर दूसरों से थोड़ा बेहतर होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि अलग होना चाहिए, नो डाउट कि तार्किक तो होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एक रेफरेंस है, मैं चाहूंगा कि इस रेफरेंस को आप सब नोट कर लें। जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक है, आपको यूरोपियन यूनियन मालूम है ना, उसका जो केंद्रीय बैंक है उसने एक बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें इस बात का गहरा शक है कि उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का इस्तेमाल, धन शोधन, मादक पदार्थों की सौदेबाजी और कर वंचना में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बड़े नोट हैं, इसका इस्तेमाल, धन शोधन मतलब एक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, हवाला कांड जिसको आप कह लीजिए, दूसरा मादक पदार्थों की सौदेबाजी, हथियारों की खरीदी भी आप इसी में कह सकते हैं, और कर चोरी के लिए किया जा रहा है, कर वंचना कर चोरी के लिए किया जा रहा है। आप ये देखिए कि वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, विश्व का अनुभव है। इसीलिए अभी आपको कुछ सुनने में आ रहा होगा कि दूसरे देश में भी अब खुशबुसाहट शुरू हो गई कि हम बड़े नोटों को बंद करें, और ऐसा होगा। तो दोस्तों, ये बात यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़े नोटों की जो परेशानी है या काले धन से इसका जो जुड़ाव है, इसे केवल भारत ही महसूस कर रहा है, बल्कि पश्चिमी देश भी महसूस कर रहे हैं, और वे सब भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाया जाए। दोस्तों, इस आर्टिकल में एक बहुत ही खूबसूरत दूसरा रेफरेंस है, और वो ये है कि आपको मालूम है कि ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तब बार बार ये बात कहते थे कि जो मैक्सिको से जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं मुझे उसे बंद करना है। मैं अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार खड़ी कर दूंगा चीन की दीवार की तरह, ताकि वो अमेरिका में प्रवेश न कर सके। अगर आप नक्शे में जाएंगे तो देखेंगे कि अमेरिका के दक्षिण हिस्से में बिल्कुल मैक्सिको सटा हुआ है। आपको कभी अमेरिका जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि अमेरिका में जो नीचे का जो वर्ग है, जो घर का काम करता है, घास काटने का काम करेगा, झाड़ू का लगाने का काम करेगा, जो श्रम प्रधान जो काम है, फैक्ट्रियों में जो मजदूर के रूप में काम करेंगे, उसमें मैक्सिको वगैरह देश के लोग मिलेंगे आपको। तो ये होता ही है कि बिना वीजा के आ जाते हैं, उनके अपने देशों में रोजगार नहीं है और अमेरिका में काम करने लगते हैं, और इनके आने से अमेरिकन्स को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो आपको मालूम ही है। तो उस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोग बहुत बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध कराना मेरा पहला पर्पज है। तो उसमें करूंगा पहला ये कि मैं मैक्सिको वासियों का अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दूंगा। मित्रों, वहीं एक किताब अभी आई है और जिसमें एक बात कही गई है, जो सर्वे हुआ है कि अमेरिका में जो अवैध प्रवासियों का जो संकट है, उसका एक बहुत बड़ा कारण नकदी लेन देन है। बहुत बड़ा कारण नकदी लेन देन है। अब आप देखिए कारण क्या है कि ये अप्रवासी जो है, क्या कहते अवैध अप्रवासी हैं, ये खाते उस तरीके से खोल नहीं सकते। जो लोग इनको रखते हैं वो उन्हें कैश देने लगते, कैश ही देंगे, वो कैश ही वो लेंगे, तो इनका गुजारा हो जाता है। अगर ये सब के सब खाते का मामला हो जाए, कैशलेस सोसाइटी का मामला हो जाए, तो इनको आकर के बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो आप कैसे खोलेंगे बिना एक वैलिडिटी के? और फिर आपको जो भुगतान होगा मजदूरी वगैरह का, वो भी कैश होगा, जिसको आप जनधन खाते से जोड़कर देख सकते हैं, जनधन खाते में भुगतान हो रहा है या मनरेगा वगैरह का, तो आप पकड़े जाएंगे। तो इसमें यह दिया हुआ है कि फिर ट्रंप को दीवार खड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कैशलेस सोसाइटी हो गई। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या का समाधान इस कैशलेस से है। मतलब ये एक तरीके से अवैध कामों को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में काम करेगा। जैसे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का ही मामला देख लीजिए कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है, स्कूल खुल गए हैं, लोग बाकायदे एग्जाम दे रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव आ गया क्योंकि उनके पास कैश है ही नहीं है जिसको दे देकर के वो गलत काम लोगों से करा सके। तो मित्रों, इसे आप इस व्यापक रूप में देखिएगा, और ये आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे आप लिख लीजिएगा। और मैंने तीन टॉपिक बताए, ये तीन टॉपिक आपके डायरी के तीन पेजेस के हिस्से बन जाने चाहिए, और इसको आप लगातार लिख लिख कर जो लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, आपको चाहिए कि आप उसे अपडेट करते रहें। और ये तीन टॉपिक है दोस्तों, देश का डिजिटलीकरण, दूसरा है कैशलेस सोसाइटी, और तीसरा है काला धन। काले धन को भी आपको बहुत व्यापक रूप से देखना होगा। दोस्तों, एक खबर और थी, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016 ये पारित हो गया है, मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016। अभी इस पर कोई चीजें सामने नहीं आई हैं, देखते हैं, जब आएंगी तो मैं आपको लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक, प्रदूषण की दृष्टि से भी, मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी दृष्टि से। दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी यदि आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो मैं शुरू से जल मार्ग के प्रति बहुत सतर्क था। मैंने जल मार्ग पर, जल प्रबंधन पर, जल व्यवस्था पर आपको बहुत से अलग अलग तरह के आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं। मैंने इन पर बातें भी की हैं, दो तीन तो मैंने जनसत्ता के बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए हैं। जब भी मुझे इस पर कुछ भी जानकारी मिलती थी, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता था। करंट कंटेंट में भी इस पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, आप जाकर के देखिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप फर्स्ट पेपर से उठाकर के थर्ड पेपर तक, जनरल स्टडीज के भी दिसंबर वाले देख लीजिए, आप देखेंगे कि जल प्रबंधन, जल मार्ग, जल व्यवस्था पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आपको मेरे लेक्चर याद हो, जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था वो आपने पढ़े हो, और करंट कंटेंट, तो केवल इसी आधार पर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की स्थिति में आ जाएंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, प्रमाण के रूप में वो चीजें आपके पास मौजूद हैं, बस उनको देखने के लिए आपको बस वक्त निकालना होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं कि जो मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण जो विधेयक पारित हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है कि हमारे देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह हैं, वो अथॉरिटी बनाई जाएगी और उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। प्राधिकरण का मतलब तो यही होता है, उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जब यह इस पर कुछ अवेलेबल होगा तो हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों न्यूज से बस इतना ही, अब हम लोग न्यूज पेपर्स पर आते हैं। मित्रों एक मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, संरक्षण का सहारा। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया में उल्टा चक्र शुरू हो गया है। 1991 में दुनिया में वैश्वीकरण का चक्र शुरू हुआ, अब लग रहा है कि जैसे वो उल्टा घूमने की स्थिति में आ गया है, और इसके घूमने की शुरुआत ब्रेग्जिट से हो गई है। ब्रेग्जिट, फिर ट्रंप, फिर इटली के संविधान संशोधन प्रस्ताव का खारिज किया जाना, और अब इसी में आपको एक कोई घटना नहीं है, आपको मैं एक कंटेंट उपलब्ध बता रहा हूं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट से आप बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं, और आप ओला कंपनी से भी शायद परिचित न हो, छोटी जगह के लोग, बड़े शहर के लोग ओला कंपनी से भी परिचित हैं जो टैक्सी उपलब्ध कराती है ना, ये मोबाइल के जरिए आप टैक्सी वगैरह बुक करते हैं, ओला और फ्लिपकार्ट। भारत के ही जो युवा इंटरप्रेन्योर हैं, फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और ओला के हैं भावेश अग्रवाल, इन कंपनियों को लगभग 10 साल ही हुए हैं, लेकिन बहुत तेजी से इन कंपनियों ने राइज किया। अब ये कंपनियां इस बात की डिमांड कर रही हैं कि सरकार से कि वो चीन की नीति को अपनाए और विदेशियों से ये कहे कि हमें आपकी पूंजी तो चाहिए लेकिन आपकी कंपनियां नहीं चाहिए, और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं सरकार को चाहिए कि उन पर विशेष ध्यान दे, यानी कि सरकार से वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इस तरीके से न लेकर के चले कि विदेशी कंपनियां आएं और हमें बाहर कर दें, क्योंकि इन दोनों कंपनियों को विदेशी कंपनियों से बहुत ज्यादा चुनौती मिलने लगे। फ्लिपकार्ट की जगह आप देखिए कि अमेजन आ गया है, ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट धीरे 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 उसकी उसके ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ओला को टक्कर देने के लिए उबेर आ गया है, वो टक्कर दे रहा है, तो अब ये डिमांड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी कैसे लिबरलाइजेशन के खिलाफ बात हो रही है कि वैश्वीकरण नहीं, खुलापन नहीं, कहीं ना कहीं आपको संरक्षण देना होगा अपनी कंपनियों को। ट्रंप भी वही कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। ब्रेग्जिट भी इसी आधार पर हुआ कि अब हमें नहीं रहना यूरोपियन यूनियन में क्योंकि ये बाहर के लोग आकर के हमारे रोजगार छीन रहे हैं, और अगर फ्लिपकार्ट और ओला अपनी कंपनी के ऊपर इस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं, विदेशी पूंजी के दबाव की बात कर रहे हैं, विदेशी प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, उसका मतलब भी यही हुआ। तो अब आप देखिए कि लगभग 25 साल तक के इस आर्थिक स्थिति को के परिणाम, यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में ही अब नकारात्मक रूप में धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं, और वही राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। तो मित्रों आपके केवल जानकारी के लिए, कंटेंट के लिए ये बात मैंने कही है, ताकि जब भी वैश्विक उदारीकरण के प्रभाव की बात हो, उसके मूल्यांकन की बात हो, तो आपके दिमाग में उसके जो निगेटिव जो आस्पेक्ट हैं वो एस्पेक्ट मौजूद रहने चाहिए, ताकि संतुलित तरीके से आप अपना उत्तर दे सके। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बारे में मैं अब डिस्कशन करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आज मैं काफी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, इसमें आप सब अपनी अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार देख लेंगे। कुछ पेपर क्लिपिंग्स ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो एक ही टॉपिक है लेकिन उस पर कई क्लिपिंग्स हैं, जैसे अभी चेन्नई में जो तूफान आया है, तो कल भी मैंने उस पर एक क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की थी और आज भी 3-4 क्लिपिंग्स उस पर हैं। तो जरूरी नहीं कि आप सारे क्लिपिंग्स ही पढ़ें, अगर आपको कोई विशेष अखबार प्रिय लगता है तो आप उसकी क्लिपिंग्स पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अंतर बातों में नहीं होता है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, इसलिए मैं अलग अलग अखबारों के क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अपने प्रिय अखबार का चयन ताकि कर सकें। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बाद अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी अपने नौजवान साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: शुभम विश्नोई, आरसी सोनी, गायत्री जायसवाल, एमएस खान, पवन दुबे, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राहुल सोनी खरगोन मध्य प्रदेश से, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, और नेहा यादव। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।